सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् सिद्धेव्युद्धशयले अज्जत्थबहित्थबन्धनम् मुक्ते भक्तिये अहम् नमिम् पुनो पुनो बंधनम ओच्छम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 14वीं पुस्तक पंचम वर्गणा खंड, उसमें बंधन अनुयोग द्वार की अपनी चर्चा हुई और उसके बाद और दो अनुयोग देखे ना हमने, बंध अनुयोग द्वार भी देखा और अभी हम वर्गणा की बात चल रही है अपनी। यहाँ हम बंधन बंधनीय की बात चल रही है, बंधनीय अनुयोग द्वार। बंधनीय में वो कर्म नो कर्म, उसको बंधनीय कहा है, उसकी बात यहाँ चल रही है। हम पृष्ठ संख्या 55 पर आ गए हैं। यहाँ वर्गणा की प्ररूपणा चलेगी। अभी वर्गणा में हमने निक्षेप पर नहीं देखा था और उसकी प्ररूपणा देख रहे हैं। प्ररूपणा यानी वो है ऐसी बात सिद्ध करेंगे। तो जो वर्गणाएं हैं उसमें एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य वर्गणा है ऐसा बता दिया उन्होंने, कल उसको हमने पढ़ा था। अब यहाँ 55 पृष्ठ पर आते हैं। वहाँ अप्रदेश के बारे में चर्चा हुई थी। अप्रदेश कहने से अनेक प्रदेश नहीं है, एक प्रदेश है, ये बात सिद्ध होती है। क्योंकि कोई भी द्रव्य हो और उसका क्षेत्र न हो, ये बात नहीं बन सकती। जो द्रव्य है उसको अपना क्षेत्र है, उसका अपना काल है, परिणाम है, उसका अपना भाव है, उसके स्वभाव गुण है। तो कोई ऐसा नहीं समझ जाए कि अप्रदेश है तो उसको अस्प्रदेश ही नहीं है, तो द्रव्य का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। अब शंका, परमाणु पुद्गल रूप है, यह बात कैसे सिद्ध होती है? उसका समाधान, उसमें अन्य पुद्गलों के साथ मिलने की शक्ति संभव है, इससे सिद्ध होता है कि परमाणु पुद्गल रूप है। फिर शंका, परमाणु सदाकाल परमाणु रूप से अवस्थित नहीं रहते, इसलिए उनमें द्रव्यपना नहीं बनता। क्या कहते हैं, परमाणु हमेशा परमाणु नहीं रहते, वो तो स्कंद बन जाते हैं, तो इसलिए वो द्रव्य नहीं ऐसा घटित होता है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि परमाणुओं का पुद्गल रूप से उत्पाद और विनाश नहीं होता, इसलिए उनमें भी द्रव्यपना सिद्ध होता है। ये उसका द्रव्यपना पुद्गलपना नष्ट नहीं होता उसका, स्कंद बन जाने पर वो भी पुद्गल ही रहता है। ये एक प्रदेशी की यानी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा जो है, एक प्रदेशी परमाणु। हाँ है ना, हाँ, पुद्गल में कौन से गुण के? हाँ, तो वो तो अगुरु लघु गुण की अपेक्षा होना चाहिए। हाँ, पुद्गल के अविभाग प्रतिशत जीव जीव के जीव राशि से है ना। वो तो हमने पुद्गल की संख्या भी देखी थी परमाणुओं की, परंतु अविभाग प्रतिच्छेद तो होते ही है ज्यादा, क्योंकि गुणों के अविभाग प्रतिच्छेद तो अनंत गुणे होते हैं। किसी भी गुण के अविभाग प्रतिच्छेद जीव राशि से ज्यादा ही हो गए, क्योंकि हमने अस्पर्शर वृक्ष उसके भी होना ही चाहिए।
देखिए हम जो लब्ध्याक्षर जो देखते हैं ज्ञान, जगन्य ज्ञान, नहीं नहीं वो उसमें भी जो उसका ज्ञान की जो कैपेसिटी है हम अविभाग प्रतिच्छेदों के माध्यम से ही देखते हैं, और उसमें भी जीव की जो राशि है उससे भाग देते, यानी वो डेफिनेटली उससे अधिक होनी चाहिए।
और बीच में बहुत सारे अनंत के भेद है ना, उसमें हमने धर्मास्तिकाय के अगुर लघु गुण का अविभाग प्रतिच्छेद, जीव के अगुर लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, फिर आगे चलकर ये पर्याय समास है। हाँ बराबर है, क्योंकि गुणों में जो शक्ति है, कोई भी द्रव्य की अपनी जो शक्ति है विभाग प्रतिच्छेदों में नापते है, वो तो अनंत है, यानी वो मिनिमम भी अनंत है। अब 77 नंबर का सूत्र हम देखते हैं। इमा दुपदेशीय परमाणु पोगल दौव वगणा नाम, यह द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा है बता दिया तो प्ररूपणा हुई उसकी। अजघन्य, पहले तो परमाणु में जघन्य वाला भी लिया था वहां पर, वो तो एक प्रदेश ही इतना ही लिया था उसमें, अब यहाँ दो प्रदेश ही कैसे इकट्ठे होते हैं, तो उसमें तो स्कंद होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है वो बताते हैं। एक प्रदेश में ऐसा कितनी उसके अविभाग प्रतिच्छेद है उसकी बात नहीं की थी, क्योंकि वो तो भाई अलग से है, बस इतनी बात ली थी। यहाँ कहते अजघन्य स्निग्ध और वृक्ष गुण वाले दो परमाणुओं के समुदाय समागम से द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है। इसके लिए जो कोई आवश्यक कंडीशन है और दो अलग अलग उपदेश हमने देखे थे, तो उसके अनुसार आपस में जो बंध होता है उनका, तो वो द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है। शंका, परमाणुओं का समागम क्या एक देशे ने होता है या सर्वात्मना होता है, इसका अर्थ ख्याल में आया? दो परमाणु इकट्ठे है तो उनके थोड़े ही भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि पूरे पूरे, उसके लिए भी वो दोनों ही ऑप्शंस बताएंगे। सर्वात्मना तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने पर अनंत परमाणुओं का भी यदि समागम हो जाए तो भी परमाणु मात्र परिणाम प्राप्त होता है। यदि पूरे दोनों के प्रदेश जुड़ जाए तो वो दोनों मिलकर एक ही हो गया, तो दो मिलकर एक होता है तो अनंत मिलकर भी एक परमाणु जितना ही हो जाएगा, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर परमाणु वर्गणा के सिवा शेष सब वर्गणाओं का अभाव प्राप्त होता है, प्राप्त करना उसको, यानी अनंत मिलकर भी एक परमाणु हो जाए तो द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी ऐसे कोई स्कंद ही उपलब्ध नहीं होगा, अन्य वर्गणा ही नहीं रहेगी। अब दूसरा ऑप्शन, एक देशे ने समागम भी नहीं बनता, क्योंकि ऐसा होने पर परमाणु सावयव प्राप्त होता है। सावयव प्राप्त होता है ना, ऐसा अगर हम कहेंगे पूरे पूरे देश से वो जुड़ा है, या वो तो उसकी बात बताइए। अब एक देश से जुड़ा है ऐसे मानेंगे तो परमाणु के भी भेद होते हैं ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक अवयव उसके एक अवयव के साथ जुड़ा है। यदि परमाणु को सावयव माना जाता है तो अनवस्था दोष आता है। शंकाकार की शंका क्या कहते हैं, क्योंकि परमाणु हमने उसी को कहा था कि जिसका दूसरा भेद नहीं होता है, सबसे छोटे द्रव्य को, अब उसको भी अगर अवयव मानेंगे तो अनवस्था दोष आता है। अनवस्था नहीं आवे यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर सब स्थूल कार्यों की अनुत्पत्ति का प्रसंग आता है, और एक प्रदेशी दो परमाणुओं के सर्वात्मना समागम को छोड़कर एक देशे ने समागम नहीं बन सकता, क्योंकि परमाणु के द्वितीयादि प्रदेश नहीं पाए जाते। उसका प्रश्न क्या है, परमाणु का पूरे पूरा बंध है सर्वात्मना, या फिर पार्शल है उसका एक देश से है? समाधान, यहाँ इस शंका का समाधान करते हैं कि द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर दो परमाणुओं का कथनचित सर्वात्मना समागम होता है। विशिष्ट अपेक्षा से बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि परमाणु निरवय होता है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से एक परमाणु को हम निरवय कहेंगे। जो परमाणु जिस कार्य के आरंभक होते हैं वे उसके अवयव होते हैं, और उनके द्वारा आरंभ किया गया कार्य अवयवी होता है। कार्य ने अभी जो कोई स्कंद जो है ना, कार्य हुआ ना, उसकी पर्याय हुई, तो परमाणु उसका अवयव हो गया, वो कार्य उसका अवयवी है। परमाणु अन्य से उत्पन्न होता है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके आरंभक अन्य पदार्थ नहीं पाए जाते। जैसे स्कंद परमाणुओं का स्कंद बनता है, वैसे परमाणु भी अन्य द्रव्य से उत्पन्न होता है, ऐसा कहना बराबर नहीं है। और यदि उसके आरंभक अन्य पदार्थ होते हैं ऐसा माना जाता है, तो यह परमाणु नहीं ठहरता। यानी अनेक द्रव्यों को मिलकर परमाणु होता है मानेंगे तो हम इसको परमाणु ही नहीं कहेंगे। परमाणु कहा ही इसलिए था कि इसका भी दूसरा कोई उसका भाग नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह इससे भी सूक्ष्म अन्य पदार्थों का सद्भाव सिद्ध होता है। यदि अनेक पदार्थों से मिलकर परमाणु होता है मानेंगे तो परमाणु से भी सूक्ष्म अन्य पदार्थ है ऐसा मानना पड़ेगा। एक संख्या वाले परमाणु में द्वितीयादि संख्या होती है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक को दो रूप मानने में विरोध आता है। एक परमाणु में एक दो तीन ऐसे हो सकते हैं अलग अलग, तो ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात, यदि परमाणु के अवयव होते हैं ऐसा माना जाए तो परमाणु को अवयवी होना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं है, क्योंकि अवयव के विभाग द्वारा अवयवों के संयोग का विनाश होने पर परमाणु का अभाव प्राप्त होता है। क्या कहते हैं, यदि हम अवयवों के विभाग करेंगे, यदि परमाणु को अवयवी माना जाए और उसके अवयवों के विभाग करेंगे, तो अवयवों के संयोग को हमने परमाणु कहा, तो उसका अगर विनाश हो जाए तो परमाणु का भी अभाव प्राप्त होता है। जैसे हमने वृक्ष किसको कहा, उसका जो ट्रंक है, थड है, उसकी शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल है, उसको हमने अलग अलग कर दिया तो वृक्ष का ही नाश हो जाएगा। इस तरह से यदि हम परमाणु को अवयवी मानते हैं तो की बात है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि कारण का अभाव होने से सब स्थूल कार्यों का भी अभाव प्राप्त होता है। परमाणु के कल्पित रूप अवयव होते हैं यह कहना भी ठीक नहीं है। आप कहेंगे परमाणु तो सबसे छोटा है, पर उसकी अवयवों की कल्पना हो सकती है, क्योंकि इस तरह मानने पर अव्यवस्था प्राप्त होती है, इसलिए परमाणु को निरवय होना चाहिए। अतः सिद्ध होता है परमाणुओं का कथनचित सर्वात्मना समागम होता है। कथनचित शब्द डाला, ये सारी बात द्रव्यार्थिक नय से चल रही है, आगे चलकर फिर उसके अवयव होते हैं ये भी सिद्ध करेंगे। यहाँ इसलिए कथनचित शब्द लिया, व्यवहार ने से को या पर्याय तकने से। अब देखो, निरवय परमाणुओं से स्थूल कार्य की उत्पत्ति नहीं बनेगी यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि निरवय परमाणुओं के सर्वात्मना समागम से स्थूल कार्य की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं आता। कार्य की उत्पत्ति यानी यहाँ स्कंद की उत्पत्ति समझना, ये पूरी बात द्रव्यार्थिक नय से बता दी, अब पर्यायार्थिक नय से बताएंगे। पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर कथनचित एक देशेन समागम होता है। परमाणु के अवयव नहीं होते यह कहना ठीक नहीं है, अभी नए बदला है ना, तभी कथन भी बदल गया। पहले तो कहा था उसके अवयव होता है ऐसा मानना ठीक नहीं है, अब कहते हैं हाँ अवयव नहीं होते ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि उसके उपरिम अधस्तन मध्यम उपरिम भाग न हो तो परमाणु का ही अभाव प्राप्त होता है। जैसे हम किसी बिंदु को पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर बाजू से देखेंगे, उसको उसके साइड से देखें, चार साइड से देख सकते हैं, नीचे से देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं। तो यदि ऐसा नहीं हो तो परमाणु का ही अभाव हो जाता है। ये भाग कल्पित रूप होते हैं यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणु में ऊर्ध्व भाग, अधो भाग और मध्य भाग तथा उपरिम उपरिम भाग कल्पना के बिना भी उपलब्ध होते हैं, यानी ये मात्र कल्पना नहीं है, तथा परमाणु के अवयव है इसलिए उनका सर्वत्र विभाग ही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप कहेंगे उसके अवयव है तो उसके अभी भी दो चार पांच टुकड़े कर दो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह मानने पर तो सब वस्तुओं के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। जिनका भिन्न भिन्न प्रमाणों से ग्रहण होता है और जो भिन्न भिन्न दिशा वाले हैं वे एक है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर विरोध आता है। अवयवों से परमाणु नहीं बना है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अवयवों के समूह रूप ही परमाणु दिखाई देता है। यह पर्यायार्थिक नय की बात चल रही है यहाँ पर। हाँ, तथा अवयवों के संयोग, स के ऊपर बिंदी देना, अवयवों के संयोग का विनाश होना चाहिए, यह भी कोई नियम नहीं है। आप कहेंगे अवयव है तो उसके विनाश से पहले, जो हमने निरवयव में यह देखा था, यदि अवयव मानेंगे तो उनके विनाश से वस्तु का ही विनाश हो जाएगा। वैसे यहाँ कहते हैं कि अवयव का विनाश होना चाहिए, ये बात कोई नियम नहीं है, क्योंकि अनादि संयोग के होने पर उसका विनाश नहीं होता। इसलिए द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा सिद्ध होती है, यह प्ररूपणा आगे सर्वत्र करनी चाहिए। आगे सर्वत्र ने त्रिप्रदेशी, चतुर्प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, सब में यही बात लागू होगी। इसी बात को अभी फिर विशेषार्थ में समझाते हैं। यहाँ प्रसंग से परमाणु सावयव है कि निरवयव, इस बात का विचार किया है। परमाणु एक और अखंड है इसलिए तो वह निरवयव माना गया है, और उसमें ऊर्ध्वादी भाग होते हैं, ऊर्ध्वादी यानी ऊर्ध्व, अधो और बाजू उसके, इसलिए वह सावयव माना गया है। द्रव्यार्थिक ने अखंड द्रव्य को स्वीकार करता है, और पर्यायार्थिक ने उसके भेदों को स्वीकार करता है। आत्मा पर तो लगाते हैं हम, हाँ, पर परमाणु पर लगाते तो ऐसे ये एक तो कुछ कहो ना, या तो अवयव वाला कहो या निरवयव कहो, हम आत्मा की भी बात करते हैं, समय सार पढ़ते हैं, तो उसमें भी द्रव्यार्थिक नहीं, कभी पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा अलग अलग बात आती है उसमें भी। यही कारण है कि द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा परमाणु को निरवयव कहा गया है और पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा सावयव कहा है। परमाणु का यह विश्लेषण केवल बुद्धि का व्यायाम नहीं है किंतु वास्तविक है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। भेदाभेदी वस्तु का स्वरूप है, वो भेद मात्र कल्पना नहीं है, ऐसे कहना चाहते। अब आगे का सूत्र, एवं त्रिपदेशीय, चतुपदेशीय, पंचपदेशीय, छपदेशीय, सप्तपदेशीय, अठपदेशीय, नवपदेशीय, दसपदेशीय, संखेज्य पदेशीय, असंखेज्य पदेशीय, परित्त पदेशीय, असंख्यात के बारे बाद परित्त लिया, यानी वो अनंत की बात होनी चाहिए, है ना, अपरित्त पदेशीय, अनंत पदेशीय, अनंतानंत पदेशीय, परमाणु पोगल दौव वगणा नाम, इसका अर्थ देखते हैं। इस प्रकार त्रिप्रदेशी, चतुप्रदेशी, पंचप्रदेशी, षट्प्रदेशी, सप्तप्रदेशी, अष्टप्रदेशी, नवप्रदेशी, दसप्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, परित प्रदेशी, अपरित प्रदेशी, अनंत प्रदेशी और अनंतानंत प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है। पहले कही गई एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा एक प्रकार की होती है, तथा अभी आएगी बात अपरित युक्तानंत को कहा होगा शायद। देखो, एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा एक प्रकार की होती है, तथा द्विपरमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा से लेकर, सॉरी, द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा से लेकर उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी, संख्यात में देखो द्विप्रदेशी को क्या कहेंगे, संख्यात कहेंगे कि क्या कहेंगे, संख्यात कहेंगे, त्रिप्रदेशी चतुप्रदेशी सौ प्रदेशी भी उसको भी संख्यात कहेंगे, कहाँ तक संख्यात प्रदेशी कहेंगे, उत्कृष्ट संख्यात तक संख्यात प्रदेशी कहेंगे। वो कितनी होगी सारी, द्विप्रदेशी को एक गिनेंगे, तीन प्रदेशी को दो, चार प्रदेशी को तीन गिनेंगे, ऐसे सबसे कितनी होगी, हाँ उत्कृष्ट संख्यात माइनस एक इतनी होगी। देखो ये द्विप्रदेशी से लेकर उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा तक यह सब संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा है, सबको संख्यात प्रदेशी ही कहा। इसके एक कम उत्कृष्ट संख्यात भेद होते हैं, क्योंकि एक को हमने उसमें से निकाल लिया जिसको हम संख्यात नहीं कहते हैं। इस प्रकार ये दो वर्गणाएं हुई, वर्गणा सबको मिलकर एक द्वि यानी वो संख्यात वर्गणा, संख्यात प्रदेशी वर्गणा कहा, तो ये दो वर्गणा की बात हुई। 23 वर्गणाएं कही है ना, तो ये दूसरे नंबर की वर्गणा हुई। उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा में एक अंक मिलाने पर वो कौन सी वैल्यू होगी, उसकी संख्या कौन सी आएगी, जघन्य परिता संख्यात, तो उसको यहाँ इस पर जघन्य असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा होती है। अब उसमें एक मिला दो मिला ऐसे मिलाते जाओ, कहाँ तक, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात तक। पुनः उत्तरोत्तर एक एक के मिलाने पर असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणाएं होती हैं, और ये सब उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा के प्राप्त होने तक होती हैं। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात में से उत्कृष्ट संख्यात के न्यून करने पर शेष में जितने रूप यानी अंक है उतनी ही असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणाएं होती हैं। ये उत्कृष्ट संख्यात को क्यों माइनस किया, हाँ उसको माइनस किया तो एक फिर मिलाना पड़ेगा। नहीं देखो एक से पचास तक हमने मान लेते हैं वो संख्यात हम मानेंगे, और 51 से 100 लेना है हमको, तो हाँ तो 51 वाला असंख्यात का भेद है और 100 वाला भी असंख्यात का भेद है उत्कृष्ट। यदि हमारे हमेशा के रूटीन से जो हम कहते हैं उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस करो और एक मिलाओ, यानी क्या करना पड़ेगा, 100 में से 51 माइनस करो और एक मिलाओ, उसके बदले 100 में से 50 ही माइनस कर दो ना, तो बराबर मिल जाएगा। तो जघन्य असंख्यात से एक कम करो तो उत्कृष्ट संख्यात आती है संख्या, इसलिए उत्कृष्ट संख्यात को माइनस करने से उनकी संख्या मिल जाती है। उतनी असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणाएं होती है। ये संख्यात प्रदेशी वर्गणाओं से असंख्यात गुणी होती है, क्योंकि संख्यात में कितनी है, उत्कृष्ट संख्यात में एक कम करो उतनी है, और ये कितनी है, ये तो उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात में से खाली वो उत्कृष्ट संख्यात ही माइनस कर दिए। गुणकार क्या है, असंख्यात लोग गुणकार है, ये सब ही तीसरी असंख्यात प्रदेशी वर्गणा है, सबको मिलकर एक वर्गणा कही तीसरी वाली असंख्यात वाली। सूत्र में कही गई परित वर्गणाएं और अपरित वर्गणाएं अनंत प्रदेशी वर्गणाओं में ही सम्मिलित है, क्योंकि अनंत और अनंतानंत से अतिरिक्त परित और अपरित संख्या उपलब्ध नहीं होती चाहिए, होता हुआ है ना। उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि पहले असंख्यात बता दिया, अभी परित और अपरित यानी वो अनंत की बात है, इसलिए अनंत के विशेषण रूप से ही परित और अपरित के निर्देश का कथन करना चाहिए। ये मूल उन्होंने मूल पुस्तक में ये लिखा है, यानी वो केवल विशेषार्थ नहीं है, वीरसेन आचार्य ने ये बात लिखी है। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर जघन्य अनंत प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है, उसको हम कहते हैं जघन्य परितानंत। पुनः क्रम से एक एक की वृद्धि होते हुए अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान आगे जाते हैं। अपने जघन्य से अनंत प्रदेशी उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी होती है, ये जिसको अनंत प्रदेशी वर्गणा कहा है उसमें से जघन्य कौन सी है, परितानंत, जघन्य परितानंत वाली। और कहां तक आगे चले गए, देखो ये है ना, अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग, इतने एक एक से इतने स्थान आगे गए यानी उतने उसमें मिलाना। जघन्य परितानंत में अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण अनंत उसमें मिला देना, उतने स्थान मिलाना का ना, उसके स्थान आगे चले जाते। अपने जघन्य से अनंत प्रदेशी उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी होती है। तो गुणकार क्या है, अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण गुणकार है। सूत्र में आया हुआ परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा शब्द त्रिप्रदेशी चतुप्रदेशी आदि पदों में सर्वत्र जोड़ना चाहिए, क्योंकि वह अंत दीपक है। यहां लिखा ना, देखो इतनी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है 78 सूत्र में 57 पृष्ठ पर, वहां लिखा है त्रिप्रदेशी से शुरुआत हुई थी सूत्र के लिए और लास्ट में जाकर इतनी ऐसी ऐसी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है। तो परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा ये जो शब्द है तो यहाँ लगाना, त्रिप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है, चतुप्रदेशी इस तरह से, संख्यात प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है, असंख्यात प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है, अनंत प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा होती है, हर एक के साथ लगाना। इसको यहाँ अंत दीपक है, हमने नमो लोयल, हाँ तो लोये सव शब्द सर्वत्र लगाना, इस तरह से यहाँ भी। इस प्रकार यह अनंत प्रदेशी द्रव्य वर्गणा चौथी है। ये सब वर्गणाएं एक क्यों हैं, क्योंकि ये सब अनंत रूप से एक है। देखो इतनी अनंतानंत वर्गणा होते हुए भी उसको एक क्यों कहा, वह अनंत प्रदेशी वर्गणा कहा ना, तो वह एक वचन क्यों लगाया वहां पर, ये या वे लगाना चाहिए था। तो कहते अनंत रूप से वो एक है, अपना क्राइटेरिया क्या है, अनंत वाला है, उस रूप से वो एक है। ये चारों ही वर्गणाएं अग्राह्य है, कौन कौन सी चारों, एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और यहां वाला जो अनंत प्रदेशी। आगे इससे भी अनंत ही प्रदेशी हो गए, परंतु उसको अलग नाम दिए हैं। अग्राह्य का अर्थ क्या है, कौन नहीं ग्रहण करता उसको, हाँ जीव नहीं ग्रहण करता, किस रूप नहीं ग्रहण कर रहे हैं, ना कर्म रूप से ना नो कर्म रूप से। तो कर्म बनने वाली जो वर्गणाएं हैं, जो कारमाण वर्गणाएं हैं, औदारिक की जो आहार वर्गणा है, भाषा वर्गणा मन, ये सब इससे वो अलग है। अभी जो चार वर्गणाएं देखी उसमें वो कोई नहीं लेते, यानी जीव इनको अपने शरीर रूप से कर्म या नो कर्म रूप से ग्रहण नहीं करता है। 23 वर्गणा में से 5 ही वर्गणाओं को ग्रहण करता है जीव। हमने 5 वर्गणा के नाम देखे ना, कौन कौन से, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनो वर्गणा, कारमाण वर्गणा, ये 5 वर्गणाओं को ही जीव ग्रहण करता है, अन्य से जीव का कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसको अग्राह्य कहा। देखो इसका विशेषार्थ, प्रथम परमाणु वर्गणा, दूसरी संख्यात वर्गणा, तीसरी असंख्यात वर्गणा और चौथी अनंत वर्गणा, ये 4 प्रकार की वर्गणाएं अग्राह्य है। इसका आशय यह है कि जीव द्वारा इनका ग्रहण नहीं होता, शेष कथन सुगम है। अभी अनंत प्रदेशी तक हमने देखा था, अब उस हाँ हाँ, जगन्य परितानंद मल्टीप्लाइड बाय वो अभव्यों से अनंत गुना सिद्धों से अनंत विभाग, इसके आगे वाली है वो अनंतानंत कहलाएगी। अभी हमने अनंत तक देखी, अब सूत्र में देखते हैं। हाँ, परित और अपरित, अपरित में युक्तानंत को ले सकते हैं। अभी अनंतानंत की बात करेंगे। अनंतानंत पदेशीय परमाणु पोगल दव वगणानम उवरी आहार दव वगणानाम, ये भी अनंतानंत में ही लिया था उसमें। अनंतानंत प्रदेशी परित अपरित और अनंतानंत सब उसमें लिए थे। अभी जो हमने सूत्र पढ़ा था ना, उसमें सभी है। देखो, परित प्रदेशी, अपरित प्रदेशी, अनंत प्रदेशी और अनंतानंत प्रदेशी। वो अनंतानंत के ऊपर के भी अनंतानंत ही हो गए, परंतु अभी उसको नाम दिए हैं, तो उसके नाम अभी हम पढ़ेंगे। अनंतानंत प्रदेशी परमाणु पोगल दव वगणानम उवरी आहार दव वगणानाम। अनंतानंत प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा के ऊपर आहार द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी द्रव्य वर्गणाएं द्रव्य वर्गणा में चाहिए। एक अंक के मिलाने पर उसको मैं करो, जघन्य आहार द्रव्य वर्गणा होगी। अभी आहार द्रव्य वर्गणा में भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक बहुत भेद होंगे, जैसे हम संख्यात के भेद देखते थे। अभी यहाँ आहार वर्गणा के जो है उसकी जो रेंज है मिनिमम से मैक्सिमम तक, फिर एक अधिक से अधिक के क्रम से, क्रस से हुए क्रम से, यानी उसमें एक मिलाओ, दो मिलाओ, तीन मिलाओ, एक एक परमाणु के बढ़ते जाने पर क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण भेदों के जाने पर अंतिम आहार द्रव्य वर्गणा होती है, यानी उत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गणा कहेंगे हम इसको। यह जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है, विशेष का प्रमाण। अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण होता हुआ भी उत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गणा के अनंतवे भाग प्रमाण है। नहीं समझे? हाँ, जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? सिद्धों के अनंतवा भाग वाला, अभव्यों से अनंत गुणा। ये जो विशेष का प्रमाण है वो उत्कृष्ट जो संख्या है उसके अनंतवे भाग प्रमाण है। वो विशेष का प्रमाण अनंतवा भाग है, यानी स्टार्टिंग भी कितना बड़ा होगा ना अनंतानंद के आगे वाला, जघन्य आहार द्रव्य वर्गणा जो है। देखो देखो, पहले जो हमने देखा था अनंत प्रदेशी में परित अनंत वगैरह, उसमें वहां कितने देखे थे, एक एक प्रदेश से बढ़ते जाओ, और वो वहां भी यही प्रमाण बताया था, परंतु वहां गुणकार रूप लिया था। वहां जो अभव्यों से अनंत गुणा वाला जो जघन्य और उत्कृष्ट में जो भेद है वो उससे उतने गुणा कहा था। अभी कहते यहाँ भी एक एक भेद बढ़ते जाने पर इतने हुए, तो ये क्या हुआ उसका, यहाँ का जो उत्कृष्ट है उसके अनंतवे भाग ही है, विशेष का प्रमाण अनंतवा भाग ही है। देखो अभी जैसे हमने 100 में 20 मिलाए, 120 हो गए, तो ये जो मिलाने का प्रमाण है 120 का कितवा भाग हो गया, 20 मिला है ना, तो कितवा भाग हुआ, हाँ 20, ये 120 का कितवा भाग है, छठवा भाग है। अभी हमने मूल संख्या 1000 ली और उसमें 20 मिलाए, तो 1000 और 20 हो गए ना, तो 1000 और 20 का ये 20 भाग कितवा भाग है, बहुत छोटा भाग है उसका, 50वां भी नहीं होगा, 51, हाँ वही 51, 50 कहो ठीक है, 1000 का 20वां नहीं लेना, 1000 और 20 का 20 कितना जो उत्कृष्ट से कंपेयर करना है ना हमको, उत्कृष्ट से कंपेयर करें 1020 का 20 ये भाग कितवा भाग है, 51वां, और पहले हमने एक छठा भाग था। वैसे यहाँ आहार वर्गणा जघन्य है, उसमें अभव्य राशि मिला दी हमने, अभव्य से अनंत गुणा वाली, तो उत्कृष्ट हो गया। तो ये जो विशेष का प्रमाण है वो उत्कृष्ट के अनंतवें भाग है, मिलाई हुई राशि। जैसे हमने अभी 51वां भाग देखा, वैसे वहाँ कितवा भाग है उसका, अनंतवा भाग है। अनंतानंत से आगे, हाँ, कहाँ पर उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी द्रव्य वर्गणा में, ये जो यहाँ से हमने देखा था ना, हाँ, अनंतानंत के लिए है। उत्कृष्ट अनंत यानी जो लास्ट सूत्र में जिसको हमने उत्कृष्ट कहा था, जिसको हम अनंत प्रदेशी कहते हैं। यहाँ भाग नहीं देना है, यहाँ विशेष अधिक है, और वहाँ भाग दिया था जो हमने जघन्य अनंत और उत्कृष्ट अनंत में दिया था, वहाँ तो गुणा का डिफरेंस था, और यहाँ विशेष अधिक का, उसी को विशेष अधिक का, वहाँ उसको ही गुणा के रूप में लिया था उसको। हाँ, के स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है ना, इसलिए दोनों जगह सरीका, इसीलिए वो 20 का जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना, दोनों जगह सरीका है, परंतु आगे वाली जघन्य की वैल्यू इतनी बड़ी है कि उसमें वो एक एक ऐड करने से वो विशेष अधिक ही मिल गया उसमें, और पहले उतनी बार ऐड किया था परंतु वो तो गुणकार रूप में चला गया। शंका देखो, शंका के आगे डैश करना, यह किस प्रमाण से जाना जाता है, तो कहते हैं अविरुद्ध आचार्यों के वचन से जाना जाता है। आचार्यों का वचन जो है सूत्र से अविरुद्ध होता है, उससे ये बात जानी जाती है। अब पांच नंबर बीच में कैसा डाला, अच्छा वर्गणा का नंबर डाला है। औदारिक वैक्रिक और आहारक शरीर के योग्य पुद्गल स्कंदों की आहार द्रव्य वर्गणा संज्ञा है, इस प्रकार यह पांचवी वर्गणा है। आहार वर्गणा जघन्य से उत्कृष्ट तक हमने देखे थे, तो उसमें ये तीन अलग अलग ग्रुप हो गए, यानी उसमें भी शुरुआत के उसमें तो परमाणु कम है ना, आगे एक परमाणु बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, तो पहले में पहले कौन से हो गए, औदारिक शरीर संबंधी, फिर वैक्रिक शरीर संबंधी और आहारक शरीर, तो तीनों को मिलकर आहार वर्गणा ही नाम है, इसको पांचवी वर्गणा कहा है। ये जीव के द्वारा ग्राह्य वर्गणा हुई ना ये, हाँ। आहार द्रव्य वर्गणानाम उपरी अग्रहण द्रव्य वर्गणानाम, आहार द्रव्य वर्गणा के ऊपर अग्रहण द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर प्रथम अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी सर्व जघन्य वर्गणा होती है। अब ये जो आहार वर्गणा है वो ग्रहण वर्गणा है, और उसके आगे वाली जो वर्गणा होगी ग्रहण वाली, उसके बीच में जो रेंज है वो अग्रहण वर्गणा है। फिर एक एक बढ़ाते हुए अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गणा होती है। यह जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणी होती है। यहाँ गुणकार लिया और वहां पर अधिक में लिया। गुणकार क्या है, अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण गुणकार है, इस प्रकार यह छठी वर्गणा है। देखो देखो, ग्रहण वर्गणा में जो है ग्राह्य वर्गणा में उसमें अधिक का प्रमाण है, और जहां जहां ये अग्रहण वर्गणा है ये बाद में सब कहां कितना गुणकार है वो बताएंगे, वो हाँ एक एक से बढ़ते हुए इतने स्थान चले जाएंगे। हाँ, इसके स्थान यहाँ गुणकार रूप में है, एक एक से बढ़ते हुए कितने स्थान, क्योंकि उसके लिए सब जगह सामान्य कथन उतना ही होगा ना, अनंत बड़े, उसकी वैल्यू अलग होगी। हाँ, अग्रहण वर्गणा में गुणाकार के रूप में है, और अभी जो हमने आहार वर्गणा में जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है, सभी वर्गणाओं का एक एक का ही फर्क है, फिर भी वो जो अनंत ना अभव्यों से अनंत गुणा वाला जो अनंत है वो भी वेरिएशन। एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए ही स्थान है, वो सारे स्थान जो है एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए, देखो क्योंकि वो अनंत का वैल्यू भी अलग अलग है ना, एक फिक्स वैल्यू नहीं है, बस अभयों से अनंत गुण है, सिद्धों के अनंत विभाग, इतनी वैल्यू लिखी, ये वैल्यू अलग है। हाँ, एक एक स्थान में नहीं, जघन्य से उत्कृष्ट का गुणकार कितना है उसकी बात चल रही, वही तो बात चल रही ना अपनी, यहाँ तो गुणकार के रूप में है, और जो हमने आहार वर्गणा में देखे तो विशेष अधिक के रूप में। और आगे की वर्गणाएं पढ़ेंगे ना तो ये आपको ज्यादा ख्याल में आएगी। फिर भी उसकी वैल्यू उसके, जैसे हम पल्ले का असंख्यात अभागी कहते हैं, हर एक की वैल्यू असंख्यात गुणी हो तो भी पल्ले का असंख्यात अभागी आता है, वैसे यहाँ समझना। हाँ, दोनों की वैल्यू एक नहीं ले सकते, अलग अलग। कौन सा? हाँ, वो समझाने के लिए बताया था, अभी यहाँ। हाँ हाँ, वहाँ ठीक। हाँ, ये यहाँ नहीं लगेगा। हाँ, अलग होगी, यानी दूसरी भाषा में इनके स्थान ज्यादा होंगे, स्थान वहाँ तो विशेष अधिक में स्थान होंगे, और यहाँ गुणकार के रूप में स्थान होंगे, स्थानों की संख्या भी उतनी ज्यादा होगी। गुणकार लिया ना, अभवन से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण गुणकार है, इस प्रकार यह छठी वर्गणा है। शंका, इन वर्गणाओं में एकत्व कैसे है, क्योंकि इतनी सारी वेरिएशन, इतनी, और उसमें एकत्व कैसे, आप उसको सबको मिलकर एक छठी वर्गणा कैसे कहते हो, उसका समाधान, पांच शरीर तथा भाषा और मन के अयोग्य अग्रहण पने की अपेक्षा इनमें एकत्व है, बराबर, उनका ग्रहण नहीं हो रहा है, यही उनमें समानता, यही उसका एक विशेषण है, उसके द्वारा इनको हमने ग्रुप बनाया। पांच शरीर तथा भाषा और मन के अयोग्य जो पुद्गल स्कंध है, यानी इसमें वो पांचों जो ग्राह्य वर्गणा होती है ना, उसको छोड़कर जो अन्य जो है, उनकी अग्रहण वर्गणा संज्ञा है। अग्रहण दव वर्गणाणु वरी तेया दव वर्गणा नाम, अग्रहण द्रव्य वर्गणा के ऊपर तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर सबसे जघन्य तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा होती है, तेजस शरीर की जघन्य द्रव्य, उसमें भी वो अलग अलग वेरिएशन हो गया। पुनः एक एक अधिक से क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर उत्कृष्ट तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा होती है, यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण है, यह सातवीं वर्गणा है। ग्राह्य में दूसरी हुई, पहली आहार वर्गणा, दूसरी तेजस वर्गणा। इसके पुद्गल स्कंध तेजस शरीर के योग्य होते हैं, इसलिए यह ग्रहण वर्गणा है। उसके आगे तेया दव वर्गणाण वरी अग्रहण दव वर्गणा नाम, फिर यहाँ बीच में अग्रहण वर्गणा होगी। तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा के ऊपर अग्रहण द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर दूसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी पहली सर्वजघन्य अग्रहण द्रव्य वर्गणा होती है। क्या कहते हैं? दूसरी ग्रहण अग्रहण संबंधी पहली अग्रहण का अर्थ क्या है? हाँ, आहार वर्गणा के पश्चात वाली पहली अग्रहण वर्गणा देखी थी, तेजस वर्गणा के बाद अभी ये दो नंबर दोबारा आई ना, अभी फिर दोबारा अग्रहण वर्गणा है, उस संबंधी सबसे पहली अग्रहण द्रव्य वर्गणा की बात चल रही है, यानी उसमें मिनिमम जघन्य दो नंबर की जो अग्रहण वर्गणा है उसमें सबसे जघन्य जो है वो कैसे निकलेगी, तेजस में एक मिला दो, फिर आगे एक एक अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर दूसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है। यह अपनी जघन्य वर्गणा से अपनी उसकी अपनी उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी है। देखो यहाँ गुणकार रूप में लिया है, गुणकार क्या है, अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण गुणकार है, यह आठवीं वर्गणा है। देखो जो ग्राह्य वर्गणा है, आहार वर्गणा और तेजस वर्गणा अभी तक हमने देखी, वो विशेष अधिक का प्रमाण है, और ये जो अग्रहण देखी पहली और दूसरी दोनों में गुणकार रूप है, उसके पहले भी गुणकार देखा था, देखो जो अनंत वाली थी, हाँ 58 पृष्ठ पर लास्ट में अनंत प्रदेशी उत्कृष्ट वर्गणा, किस यानी आहार वर्गणा के पहले वाली, उसके पूर्व की वर्गणा है, लेनी वहां भी गुणकार रूप था, उसका तो असंख्यात लोक है, और अनंत प्रदेशी में या अभव्यों वाला वो गुणकार है। देखो 8 नंबर है ना, यह 5 शरीरों के ग्रहण योग्य नहीं है, इसलिए इसकी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संज्ञा है। शंका, जघन्य से उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान अविरुद्ध आचार्य वचन से जाना जाता है। अब अगहन द्रव्यवर्गणानाम उवरी भाषा द्रव्यवर्गणानाम, अग्रहण द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर भाषा द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गणा में एक अंक के प्रक्षिप्त करने पर, प्रक्षिप्त करना का अर्थ क्या है, ऐड करना है, मिलाने पर सबसे जघन्य भाषा द्रव्य वर्गणा होती है। इससे आगे एक एक अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर भाषा द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट द्रव्य वर्गणा होती है। यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, अपनी जघन्य वर्गणा का अनंतवा भाग विशेष का प्रमाण है। प्रतिभाग क्या है, अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग प्रतिभाग है, यानी जघन्य को या अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग वाले अनंत से, पर्टिकुलर अनंत से भाग देंगे, जो भाग आएगा उसको उसी में जघन्य मिला दो तो आगे वाला स्थान आएगा, कौन सा, उत्कृष्ट वाला। देखो ये विशेष अधिक का प्रमाण कैसा निकालना है, जघन्य को अनंत का भाग दे दो, जो संख्या है उसी में मिला दो तो उसको विशेष अधिक कहा, अनंत में भाग से अधिक, मतलब अनंत के लिए कौन से अनंत का भाग देना है, तो ये अभव्यों से अनंत गुणा सिद्धों के अनंत विभाग वाला अनंत, यह नवी वर्गणा है। भाषा द्रव्य वर्गणा के परमाणु पुद्गल स्कंद चारों भाषाओं के योग्य होते हैं, तथा ढोल भेरी नगारा और मेघ का गर्जन आदि शब्दों के भी योग्य ये वर्गणाएं होती हैं। पीछे हाँ, आगे तो ऐसा ही ना, आगे वहाँ परमाणु की संख्या भी बहुत बढ़ती है, चार भाषा में वो तत्व वितत वगैरह जो है ना वो होना चाहिए। घन और सुशीर, हाँ वो तो प्रायोगिक में आते हैं, है ना, और ये वैश्विक में ये मेघ का गर्जन आता है, परंतु ढोल भेरी इसको उसमें दोनों में वो तो प्रायोगिक में आएंगे। ये प्रायोगिक है, मेघ का गर्जन वैश्विक है। हाँ, आदि शब्दों के भी योग्य ये वर्गणाएं होती है, यही वर्गणाएं होती है। भाषा वर्गणा में तो सभी लेना, इन्हें अक्षरात्मक अनक्षरात्मक भाषा रूप भाषा रूप भाषा अभाषा हाँ प्रायोगिक और वैश्विक सभी प्रकार की भाषा लेना उसमें। आवाज जिसको हम कहते हैं, यानी अकेले शब्द नहीं लेना। हाँ, शंका, नगारा आदि के शब्दों की भाषा संज्ञा कैसे है, यानी आवाज को सभी आवाजों को भाषा क्यों कहते हैं, ये कहना चाहते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि भाषा के समान होने से भाषा है, इस प्रकार के उपचार से नगारा आदि शब्दों की भी भाषा संज्ञा है। ये जो वाद्यों की जो आवाज है भाषा के समान होते हैं ना, इसलिए उसको भी भाषा कह दिया उपचार से। भाषा दव वगणाणम उपरी अग्रहण दव वगणाणाम, भाषा द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर अग्रहण द्रव्य वर्गणा है। ये ग्राह्य वर्गणा के बीच बीच में अग्रहण द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट भाषा द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर तीसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी सबसे जघन्य वर्गणा होती है। इसके आगे एक एक अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण स्थान जाकर तीसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है, जघन्य से उत्कृष्ट। अब यहाँ भी वो क्या कहेंगे, गुणकार रूप में होगी, अग्रहण वर्गणाएं गुणकार रूप में है, यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणी है। गुणकार क्या है, अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण गुणकार है, यह दसवीं वर्गणा है। इसके भी पुद्गल स्कंद ग्रहण योग्य नहीं होते, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर इसकी अग्रहण संज्ञा नहीं बन सकती। वो कहा ही इसलिए कि इसका जीव ग्रहण नहीं करता है। अग्रहण दव वगणाएं उवरी, ये मन चाहिए, मन दव वगणा नाम 62 नंबर का देखो पीछे, कौन से पेज पर मन दब, हाँ हाँ ना, मैं पेज नंबर को ही देख रही थी गाथा में। हाँ, 85 नंबर देखना, अगण दव अगणा उवरी मण दव अगणा नाम, मण बाणात लगा मण दव अगणा, बड़ी न बड़ा न करना, नीचे अर्थ पढ़ते हैं। अग्रहण द्रव्य वर्गणा के ऊपर मनो द्रव्य वर्गणा है। तीसरी उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर जघन्य मनोद्रव्य वर्गणा होती है। फिर आगे एक एक अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर उत्कृष्ट मनोद्रव्य वर्गणा होती है। यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट वर्गणा विशेष अधिक है। बात आई ना, जहाँ जहाँ ग्रहण वाली है वहाँ विशेष अधिक है, तथा विशेष का प्रमाण सबसे जघन्य मनोद्रव्य वर्गणा का अनंत वा भाग है। इसका प्रतिभाग क्या है, ये जघन्य मनोद्रव्य वर्गणा है, उसको ये अभव्यों से अनंत गुणे वाले अनंत का भाग देना और जो भाग आएगा वो उसी में मिलाना, उसको कहते प्रतिभाग क्या है। अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण प्रतिभाग है। यह 11वीं वर्गणा है। हाँ, हाँ, ये जो परमाणुओं की अपेक्षा से पहले आहार, फिर तेजस, फिर भाषा, फिर मनोवर्गणा, हाँ, फिर कर्मण। हाँ, आहार नहीं, उसमें जो है ना वो तो बात अलग है, वो परे परे अनंत गुणे और असंख्यात गुणे ऐसा कुछ आया था वहां पर, यानी आहार भाषा मन को लिया और तेजस कारमान को अनंत गुणा वाले में लिया, परंतु वहां जो कुछ अलग बात बतानी है वहां। हाँ, ये क्रम अलग है यहाँ पर। हाँ, ये मनोद्रव्य वर्गणा के बारे में आए थे ना, मनोवर्गणा के जितने भेद है, परमावधि ज्ञान के भेद, उनकी बात। हाँ, देखो अभी कितने भेद है ना यहाँ पर, इतने भेद वो परमावधि ज्ञान के इतने भेद हो गए। ये 11वीं वर्गणा है, इस वर्गणा से द्रव्य मन की रचना करते हैं। देखो हमें लगता है कि साइंस हमारा इतना प्रूव हुआ, उसमें इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें, ये तो कितनी सूक्ष्म बातें, उसके कितने भेद है? परे परे सूक्ष्म मसे, सूक्ष्म परिणमन के बाद। क्या प्रश्न है फिर? हाँ, परमाणुओं का परिणमन होता रहता है। हाँ, अभी किसी विवक्षित काल में जो भाषा वर्गणाएं हैं वो भाषा रूप परिणमने की योग्यता वाली है, हो सकती है वो परमाणु छूटकर अलग हो जाए तब। हाँ, क्योंकि देखो परमाणुओं का कॉम्बिनेशन है, फिर वो तो स्कंद बनते हैं और बिखरते अलग अलग रूप से होते हैं, क्योंकि परमाणु में उसके स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें जो कोई गुण है वो चेंज होते रहते हैं, तो वो अन्य वर्गणा रूप हो जाएंगे। किसमें? हाँ, संबंध है, क्योंकि समझाने के लिए स्निग्ध रुक्ष वो बंध के कारणभूत में लिए, परंतु उसके उसके जो अन्य जो है वर्ण रस गंध वगैरह वो भी अपने अपने योग्यता से बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? यहाँ परमाणु की संख्या पर है, ये वर्गणा ही किसको कहा यहाँ पर, विशिष्ट नंबर ऑफ परमाणुओं का यहाँ जो इकट्ठे है वो उसी को यहाँ वर्गणा कहा। यहाँ प्रदेशों को लिए ना परमाणु की संख्या को। देखो मनोद्रव्य वर्गणा के ऊपर ऊपर पढ़ा ना, मनदव वगणानम उवरी अगण दव वगणानाम 86 नंबर उत्कृष्ट। क्या हुआ, हम 63 पृष्ठ पर आ गए? अरे वाचा पढ़ा ना, इस वर्गणा से द्रव्य मन की रचना करते हैं। हाँ, मैंने तो अंडरलाइन भी कर दी। हाँ, पढ़ा, ये द्रव्य मन से रचना करती, ये भी पढ़ा था, और ये मनदव वगणा आधा पड़ा था, तभी कुछ बातें निकली थी, और मैंने परमावधि की बात भी निकाली थी बीच में। मनोद्रव्य वर्गणाओं के ऊपर अग्रहण द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट मनोद्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर चौथी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी सबसे जघन्य वर्गणा होती है। इससे आगे एक एक प्रदेश के अधिक क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर चौथी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी वह बराबर करना उत्कृष्ट वर्गणा होती है। यह अपनी जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी है, गुणकार में है ना ये, तो गुणकार क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण गुणकार है। यह 12वीं वर्गणा है। यह ग्रहण योग्य नहीं होती क्योंकि यह न्यूनाधिक परिणाम वाली है। परिणाम के परिमाण परिमाणत्ता दो, परिमाण करना उसका, यानी उसका प्रमाण हीनाधिक है। विशिष्ट प्रमाण वालों को ही ग्रहण होता है। वो जो रेंज ऊपर नीचे की होगी उसको ग्रहण नहीं करता। जैसे अभी हम सुनने की हमारी विशिष्ट रेंज है ना, तो उतने वाले वो जो साउंड है, साउंड वेव्स की जो कुछ फ्रीक्वेंसी, उसी को ग्रहण करेंगे। उसके नीचे ऊपर की नहीं, देखने की जो है ना, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, वो उसको नहीं देखते, वो बीच वाले को देखेंगे हम। वैसे यहाँ ग्रहण के अपनी अपनी योग्यता के वाले उसका ग्रहण होता है। 87 नंबर, अगहण दव वगणाणम उवरी कम्मय दव वगणाणाम। अग्रहण द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर कार्मण द्रव्य वर्गणा है। जो देखो हमारी ग्राह्य 5 है ना, तो उसके अंतराल में जो है उसको अग्राह्य कहा है। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी नाम दिए। 4थी अग्रहण द्रव्य वर्गणा के ऊपर कार्मण द्रव्य वर्गणा है। 4थी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट द्रव्य वर्गणा में एक अंक के प्रक्षिप्त करने पर सबसे जघन्य कार्मण शरीर द्रव्य वर्गणा होती है। आगे एक एक प्रदेश अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण स्थान जाकर कार्मण द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है। यह अपनी जघन्य वर्गणा से अपनी उत्कृष्ट वर्गणा विशेष अधिक है। जैसे हमने ग्राह्य में सब जगह विशेष अधिक लिए, विशेष का प्रमाण कितना है? जघन्य कार्मण वर्गणा के अनंत विभाग प्रमाण है ये विशेष का प्रमाण। जो क्योंकि जघन्य ही इतना बड़ा हो गया अभी, उसका अनंत विभाग उसी में मिला दो। प्रतिभाग क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण इसका प्रतिभाग है। यह 13वीं वर्गणा है। इस वर्गणा के पुद्गल स्कंद 8 कर्मों के योग्य होते हैं। ये कार्मण वर्गणा हो गई, द्रव्य वर्गणा। 88 नंबर, कम्मय दव वगणाणम उवरी ध्वखंद दव वगणाणाम। कार्मण द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर ध्रुवस्कंद द्रव्य वर्गणा है। यह ध्रुवस्कंद पद का निर्देश अंत दीपक है। इससे पिछली सब वर्गणाएं ध्रुव ही है, अर्थात अंतर से रहित है। ध्रुव का अर्थ क्या है? देखो हमने अभी तक एक एक प्रदेश से बढ़ती हुई वर्गणाएं देखी, बीच में कोई गैप नहीं था कि वो वाली कोई वर्गणाएं नहीं है, ऐसी बात नहीं थी। उसके भले कभी कोई अग्राह्य थी, कोई ग्राह्य थी, उसमें कोई आहार वर्गणा थी और कोई तेजस वर्गणा थी, परंतु सभी एक एक प्रदेश से बढ़ती हुई देखी हमने, इसलिए सबका नाम क्या है? ध्रुव। यानी ध्रुव स्कंद ये जो शब्द है अभी तक के सभी वर्गणाओं के लिए आता है, अंतर से रहित है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहां से लेकर आगे कही जाने वाली सब वर्गणाओं में अग्रहण पने की निरंतर अनुवृत्ति करनी चाहिए। देखो क्या कहते हैं, अभी तक जो है वो उसमें ध्रुवपना समझना, और इसके आगे की जो है वो अग्रहण पने की अपेक्षा वो सब अग्रहण वाली ही समझना। यानी ये ध्रुवस्कंध वाली से लेकर आगे की सब अग्रहण वर्गणाएं ही है। उत्कृष्ट कार्मण वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर जघन्य ध्रुवस्कंध वर्गणा द्रव्य वर्गणा होती है। ध्रुव बराबर करना उसे। अनंतर एक एक अधिक के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे स्थान जाकर, अभी पहले कितने स्थान जाकर कहते थे, अभयों से अनंत विभाग, अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग। अब कितने स्थान जाएंगे? सब जीव राशि के अनंत गुणा स्थान जाकर ध्रुव स्कंद द्रव्य करना, द्व हुआ है, ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है। यह अपने जघन्य से अपनी उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी है और यह सब जीवों से अनंत गुणा गुणकार है। गुणकार क्या है? सब जीवों से अनंत गुणा। अभी तक जो अग्राह्य में तो हमने अभव्यों से अनंत गुणा वाला, सिद्धों के अनंत विभाग वाला गुणकार देख रहे थे। अब यहाँ गुणकार है जीवों से अनंत गुणा। यह हाँ ये भी अंतर से रहते हैं। हाँ ये भी, यानी इससे लेकर इसके पहले वाले के सब में ये अंत दीपक, यानी इसमें भी लागू होता है और इसके पहले में भी लागू होता है। ये 14वीं वर्गणा है। शंका, यहाँ पर आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा ही कहनी चाहिए क्योंकि वे बंधनीय है। क्या कहते हैं? अपना प्रकरण क्या है? बंधनीय अनुयोग द्वार चल रहा है। शेष वर्गणाएं नहीं कहनी चाहिए क्योंकि वे बंधनीय नहीं है। समाधान, नहीं, क्योंकि शेष वर्गणाओं का कथन किए बिना बंधनीय वर्गणाओं के कथन करने का कोई मार्ग नहीं है, अथवा व्यतिरेक का ज्ञान हुए बिना निश्चित अन्वय के ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। व्यतिरेक में उसमें जो भिन्नता है और अन्वय ने वो जो कोई कंटिन्यूस है, सिमिलैरिटी जो है, हाँ। इसलिए यहाँ बंधनीय व अबंधनीय सब वर्गणाओं का निर्देश किया है। ध्रुवखंड दव वर्गणानाम उवरी सांतर निरंतर दव वर्गणानाम। देखो ये पहले सांतर निरंतर शब्द आया, अभी तक की सभी निरंतर ही थी। जो वर्गणा नीचे अर्थ पढ़ा ना मैंने, ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा है। जो वर्गणा अंतर के साथ निरंतर जाती है उसकी सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा संज्ञा है। यह सार्थक संज्ञा है। उत्कृष्ट ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर जघन्य सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा होती है। आगे एक एक अंक से अधिक क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे स्थान जाकर सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है। यह अपनी जघन्य वर्गणा से अपनी उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी है। गुणकार क्या है? सब जीवों से अनंत गुणा गुणकार है। यह 15वीं वर्गणा है। यह भी अग्रहण वर्गणा ही है क्योंकि यह आहार, तेजस, भाषा, मन और कर्म के अयोग्य है। सांतर निरंतर दव वर्गणानाम उवरी ध्रुवशून्य वर्गणानाम। सांतर निरंतर उन्होंने कुछ खास स्पष्ट नहीं किया है इसमें। जो वर्गणा अंतर के साथ निरंतर जाती है ऐसा लिखा है। अब यहाँ देखते आगे वाली 90 नंबर वाला दव सुन दव वर्गणान ऊपर पत्ते शरीर दव वर्गणान आम नहीं ऊपर के 90 का हमने 90 सूत्र पढ़ा। सांतर निरंतर दव वर्गणानाम उवरी ध्रुव शून्य वर्गणानाम उसका अर्थ देखते हैं। सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर ध्रुव शून्य वर्गणा है। देखो ध्रुव शून्य वर्गणा का अर्थ क्या है? वो कोई ऐसी वर्गणा एग्जिस्टिंग ही नहीं है शून्य का, फिर भी उतना रेंज वाला बीच में वो वर्गणा बतलाएंगे क्योंकि आगे वाले एग्जिस्टिंग है। देखो जैसे हम कहेंगे कि अभी हमने 100 तक के परमाणुओं का समूह को एक वर्गणा कही, और आगे दूसरी कोई एग्जिस्टिंग वर्गणा जो है वो 200 से लेकर आगे के परमाणुओं के समूह को, यानी 101 से लेकर 199 वाले कोई ग्रुप वाला ऐसे परमाणु या है ही नहीं, ऐसे स्कंद ऐसे वर्गणा ऐसे स्कंद ही एग्जिस्टिंग नहीं है, तो उसको शून्य कहा। देखो हम पढ़ेंगे, अतीत अनागत और वर्तमान काल में इस रूप से परमाणु पुद्गलों का संचय नहीं होता, इसलिए इसकी ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा यह सार्थक संज्ञा है। 23 वर्गणाओं में तो ऐसी 4 है, यानी सत स्वरूप एग्जिस्टिंग रूप से तो 19 ही वर्गणाएं हैं, 4 वर्गणाएं ऐसी ध्रुव शून्य रूप से हैं, उसकी बात करेंगे, अभी तो ये पहली बार आई। हाँ, नाम दिया है, हाँ वहां कोई ऐसे पुद्गल रूप इस विशिष्ट संख्या में संचय रूप नहीं है। या तो वो 100 वाला ग्रुप होगा या 200 वाला होगा, बीच वाला कोई है ही नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ, उसका नाम तो देगी ना बीच, क्योंकि कहना तो है ये रेंज वाला ये वर्गणा हो सकती है, मगर उसमें कोई ऐसी होती ही नहीं है। देखो, उत्कृष्ट सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा के ऊपर एक परमाणु अधिक परमाणु पुद्गल स्कंद तीनों ही कालों में नहीं होता, ख्याल है ना, ऐसा कोई स्कंद एग्जिस्टिंग ही नहीं तीनों काल में। दो प्रदेश अधिक भी नहीं होता, इस प्रकार तीन प्रदेश अधिक आदि के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे स्थान जाकर। देखो पहले वो गुणकार अलग था, अभी ये ध्रुव शून्य वर्गणा से वो ध्रुव गुणकार अलग हो गया। देखो हमने ध्रुव स्कंध में भी देखा था, 14वें में भी देखा, 15वें में भी यही गुणकार देखा, अभी ये जो 16वीं है उसमें भी जीव से अनंत गुणा वाला गुणकार देख रहे हैं, जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी है और गुणकार क्या है, सब जीवन से अनंत गुणा गुणकार है। यह 16वीं वर्गणा है जो सर्वदा शून्य रूप से अवस्थित है, क्या कहा, सर्वदा यानी तीनों काल में शून्य रूप से, यानी वो कोई एग्जिस्टिंग ही नहीं है। हाँ, अब 91 नंबर, ध्रुवशून्य दव वगणाणम उवरी पत्तेय शरीर दव वगणाणाम। ध्रुवशून्य द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा है, एक एक जीव के एक एक शरीर में उपचित हुए कर्म और नो कर्म स्कंधों की प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा संज्ञा है। अब उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है। उपचित यानी वो संचित कहो या इकट्ठे हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहेंगे हम। वर्गणा तो इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होगी, पूरा शरीर इंद्रियों से ग्राह्य है। कर्म और नो कर्म स्कंदों की मिलकर जो है, कर्म और नो कर्म स्कंध इकट्ठा है, उसकी है प्रत्येक शरीर वर्गणा। शंका, यह जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा किसके होती है, उसका समाधान, जो जीव सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकों में पल्ले का असंख्यात वा भाग माग हुआ है। पल्ले का असंख्यात वा भाग कम कर्म स्थिति काल तक क्षपित कर्मांशिक रूप से रहा। देखो इसकी बात हमने पहले पढ़ी थी, ये पूरा पहले पढ़ेंगे। सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक में कितना काल रहा, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक का, हाँ किसमें, कर्म स्थिति माइनस पल्ले का संख्या का भाग, इतना रहा हाँ। किस तरह से क्षपित कर्मांशिक रूप से पुनः जिसने पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण संयमा संयम कांडक इनसे कुछ अधिक सम्यक्त्व कांडक तथा अनंतानुबंधी के विसंयोजना कांडक तथा आठ संयम कांडक करते हुए चार बार कषाय की उपशमना की है, यानी चार बार उपशम श्रेणी चढ़ा हुआ है, एक क्षपित कर्मांशिक जीव लेना है। पुनः अंतिम भव को ग्रहण करते हुए पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, इतनी बार संयम ग्रहण करा, इतनी बार सम्यक तो बार बार यानी वो फिर गिर गया, फिर प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी की। ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना कौन कर सकता है, कौन सा गुणस्थान वाला करता है? हाँ, चार से कोई भी करता है, चार से ज्यादा नारकी में और देवों में भी हो सकती है, पर हमने हाँ पल्ले के असंख्यात भाग बार, तो एक बार विसंयोजना करने पर अनंतानुबंधी तो सत्ता में से नष्ट हुआ था, तो अभी दोबारा कहाँ से आया? बार बार मिथ्यात्व में गया बार बार नया अनंतानुबंधी बांधा फिर, क्योंकि सम्यक तो भी इतनी बार किया है ना उसने पल्ले के असंख्यात भाग बार अरे यहाँ तो ऐसी अपने ही चल रही कोई समय दृष्टि, हाँ 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 वो है कि नहीं है, नहीं कि ये कितनी बार क्या क्या पलटनी हो जाती है, और उसकी कहाँ महत्ता है? भी इतने असंख्यात समय दृष्टि पड़े हैं, मनुष्य ही संख्यात है, वो भी करोड़ों में है समय दृष्टि। समय तो कांड कहने सम्यक तो प्राप्त किया, अनंतानुबंधी विसंयोजना कांड कहने उतनी बार उसके किए, और संयमा संयम भी इतने बार किया उसने, और संयम आठ बार किया, और उपशम श्रेणी भी चार बार चढ़ा, यानी सब कुछ पॉसिबल सब कर दिया मैक्सिमम टाइम, यानी बार बार उसकी इतनी निर्जरा हुई है इतना बताना है हाँ आठ बार संयम कांडक, एक संयम में वो चार, एक कांडक में चार बार होता है फिर संयम मुनि पद 32 बार लेता है ना, तो उसके कांडक आठ कहे, तो एक हाँ एक कांडक में ने उसमें फिर चार बार ऐसा कुछ है। पुनः अंतिम भव को ग्रहण करते हुए हाँ आठ संयम कांडक का, क्योंकि 32 बार वो मुनि पद धारण करता है ना भावलिंगी संत। पुनः अंतिम भव को ग्रहण करते हुए पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, अनंतर गर्भ निष्क्रमण काल से लेकर, यानी जिसको हम कहते हैं पैदा हुआ कहते हैं हॉस्पिटल में एक प्रसूति हुई हाँ, अनंतर गर्भ निष्क्रमण काल से लेकर आठ वर्ष और अंतर्मुहूर्त होने पर सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त करके सयोगी जिन हो गया, यानी मिथ्यात्व अवस्था में जन्मा था ना, क्योंकि सम्यक और संयम को एक बार एक साथ ग्रहण किया उसने, सयोगी जिन हो गया। अनंतर कुछ कम पूर्व कोटि काल तक औदारिक और तेजस शरीर की अधस्थिति गलना के द्वारा पूरी निर्जरा करके तथा कर्मांश पूरी, क्या लिखा है क्या क्या कुछ भी करे वो तो मिथ्यात्व में तो जा सकता है ना, ये अंतिम एक बार वाला संयम बाकी रखा ना लास्ट भोग के लिए। ऊपर क्या लिखा है पूरी वजन ओराली शरीर विस्तृत नहीं अदर थी गलना है निर्जरम करिए, निर्जरा करके पूरी शब्द कहाँ से लिया, सव्वम ओराली, अच्छा तदो देशुन पूर्व कोड़िम सव्वम ओराली तेज शरीर अदर थी गलना है निर्जरम करिए, अच्छा पूरी निर्जरा करके, सर्व निर्जरा करके क्या कहना चाहते हैं? देखो अभी हमने क्या देखा, लास्ट भव में वो आया है, पूर्व कोटि वाली उसकी आयु है, 8 वर्ष के बाद सम्यक और संयम ग्रहण किया, तो औदारिक शरीर का और क्या तेजस शरीर का क्या होगा? अधस्थिति गलना के द्वारा वो गल रहा है, क्योंकि अधस्थिति गलन है ना, एक समय में एक समय प्रबद्ध खिर रहा है। देखो संयम के ग्रहण करने पर कर्मों में क्या होता है, गुणश्रेणी निर्जरा होती है, उसमें तो बहुत सारे निषेक असंख्यात समय प्रबद्ध भी खिरते चले जाते हैं, और औदारिक शरीर में क्या होगा, एक एक निषेक गिलेगा, जितना समय प्रबद्ध ग्रहण भी करेगा और अधस्थिति गलन है, नीचे के निषेक एक एक क्रम से गलते चले जाएंगे, यही क्रम है ना नवकर्म में। तेजस शरीर में भी गुणश्रेणी निर्जरा होगी कि नहीं होगी? नहीं, केवल कर्म में ही होती है, इसलिए कहा औदारिक और तेजस जो है उसकी अधस्थिति गलना के द्वारा एक एक निषेक गलते गलते पूरी निर्जरा करके कहां तक आया है, वो संयोगी जिन हो गया है। हाँ, तो ऐसे करते करते अभी कहां तक आएगा, देखो कारमान शरीर की गुणश्रेणी निर्जरा करके अंतिम समयवर्ती भव्य हो गया। भव्य कहाँ तक कहेंगे, 14वें तक, यानी 14वें गुणस्थान का अंतिम समय वाला ये हो गया। अभी उसके औदारिक शरीर के इतनी उसने निर्जरा किए तेजस की, अभी कितना बाकी, एक लास्ट जो अंतिम समय उसका। इस प्रकार आकर जो अयोग केवली के अंतिम समय में स्थित है, उसके सबसे जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है, क्योंकि इसके शरीर में निगोद जीवों का अभाव है। ये प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का, प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, देखो फिर से दोबारा, एक एक शरीर में कर्म और नौकर्म स्कंद जितने इकट्ठे हुए हैं, तो मिनिमम पॉसिबल कर्म और नौकर्म कब हो गए, क्षपित कर्मांशिक रूप से आए हुए के लास्ट समय में, अयोगी के। तो क्षपित कर्मांशिक क्या है, तो उसमें औदारिक में क्या डिफरेंस पड़ा, औदारिक में नहीं कर्म में इतना पड़ा है, मेजॉरिटी तो कर्म परमाणुओं की है ना वहां पर। वही तो, इसीलिए इतने काल तक उसको निगोद में डाला। उसमें भी हमने देखा था, वहां भी स्थिति कांडक वगैरह होते रहते हैं, इसलिए उसको वो क्षपित कर्मांशिक पहले हमने देखा था ना, बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की थी, गुणित कर्मांशिक की और क्षपित कर्मांशिक। एक क्षपित कर्मांशिक अभी जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा वाला लिया, उत्कृष्ट में अभी वो गुणित वाले को याद करेंगे। देखो अब इस वर्गणा के महात्म्य का ज्ञान कराने के लिए स्थान प्ररूपणा करते हैं। महात्म्य ये कितनी बड़ी है, यानी उसमें कितने परमाणु है, उसके कितने भेद हो सकते हैं। यथा औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर के परमाणुओं के 3 पुंज ऊपर स्थापित करके, ये तीनों का इकट्ठा का नाम हमने प्रत्येक शरीर वर्गणा कहा था, अब ये तीनों के 3 अलग अलग पुंज करने, और उनके पहले ही विश्रसोपचयों के पुंज स्थापित करके, फिर इन जघन्य 6 पुंजों के ऊपर परमाणुओं के बढ़ाने की विधि कहते हैं। ये जो सारे जो 3 है, तो वो अपने अपने विश्रसोपचयों से सहित है, तो 3 तो पुंज ओरिजिनल और उसके अपने अपने विश्रसोपचयों का पुंज, ये 6 पुंज हुए। अब उसके ऊपर परमाणु बढ़ेंगे, किसी जीव के इतना है जघन्य, उसमें किसी को 1 परमाणु ज्यादा है, 2 परमाणु, जो कितने ज्यादा है उसको कहेंगे। क्या क्या, हाँ भाषा वर्गना, तो उस समय वो तो भाषा रूप परिणमित हो जाती है, ये ग्रहण किए हुए ऐसे स्कंद रूप से वहां थोड़ी बैठी अंदर। भाषा वर्गण का ग्रहण कब होगा? जब उच्छ्वास और स्वर नाम कर्म का उदय है तब तक। वो कब तक है? 13वें तक ही है। हाँ, अभी तो उसका कोई संबंध ही नहीं है। मनोवर्गणा का भी ग्रहण चल रहा है क्या अभी? वो तो ग्रहण तो औदारिक का भी रुक गया है। अभी जो कोई है वो छूटने का चल रहा है, संचय में से उसका खिर रहा है ना सब। देखो, क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर जो अंतिम समयवर्ती भव्य हुआ है, उसके औदारिक शरीर के विसरसोपचय पुंज में एक विसरसोपचय परमाणु के बढ़ने पर वह अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। अभी औदारिक शरीर का परमाणु नहीं बढ़ाया, क्या बढ़ाया? विसरसोपचय का एक परमाणु बढ़ाया, क्योंकि औदारिक के एक परमाणु के साथ वो अनंत अनंत विसरसोपचय होते, एक एक परमाणु के साथ। पुनः उसी में दो परमाणुओं के बढ़ने पर तीसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। ये समझ में है? अभी हमने जो क्षपित कर्मांशिक से आया है, प्रत्येक शरीर वर्गणा की जघन्य वर्गणा देखी थी, वो विसरसोपचय सहित वाले हैं सब। हाँ, 14वें के अंतिम समय में। अभी विसरसोपचय में किसी का एक परमाणु और ज्यादा होगा, किसी के दो परमाणु ज्यादा होंगे, इस तरह से उसको बढ़ाएंगे। तीन परमाणुओं के बढ़ने पर चौथा अपुनरुक्त स्थान होता है। चार विसरसोपचय परमाणु पुद्गलों के बढ़ने पर पांचवा अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार औदारिक शरीर के विसरसोपचय पुंज में सब जीवों से अनंत गुणे परमाणुओं की वृद्धि होने तक उत्तरोत्तर एक एक परमाणु की वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार वृद्धि करने पर औदारिक शरीर के विसरसोपचय पुंज में, छह पुंज में से एक ही पुंज की बात चल रही है, सब जीवों से अनंत गुणे अपुनरुक्त स्थान उपलब्ध होते हैं। यह स्थान प्ररूपणा संभव सत्य की अपेक्षा की है। संभव सत्य ने पॉसिबिलिटी, वो भी सत्य है। संभावना सत्य कहते हैं ना, पहले हमने देखा था क्या, वो सर्वार सिद्धि वाले वो नीचे तक जाने की गमन की शक्ति, वो गमन नहीं करता। इंद्र को जम्बूद्वीप पलटाने के सामर्थ्य है, उसको कभी वो पलटाने का वो कार्य करके तो देखो, इतनी शक्ति है कि नहीं, वो ट्राई तो करे तो वो कहीं नहीं करेगा। तो उसमें कितनी शक्ति है, उसको ये संभावना सत्य कहते हैं। देखो, संभव सत्य किसे कहते हैं, ये लिखा है। देखो समाधान, इंद्र मेरु को पलटने में समर्थ है, इसे संभव कहते हैं। ये मेरु क्या पूरा ही जम्बूद्वीप पलटा देवे? शंका, व्यक्त रूप से इतने स्थानों के उत्पन्न होने पर क्या दोष उत्पन्न होता है? आप कहेंगे इतने अलग अलग स्थान कहो ना, क्या दोष होगा? कहते हैं नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर सब जीवों से सिद्ध अनंत गुणे प्राप्त होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? एट ए टाइम अयोगी कितने हो गए? एक समय में। हाँ, यानी वो तो उसकी अपेक्षा छोड़ दो, तो जो नहीं उसमें आते जाएंगे उसकी कुछ संख्या थी होगी ना, थोड़े हो गए। हाँ, इतने सभी स्थान अगर हम मानेंगे तो क्या होगा? इतने अयोग्य होने का प्रसंग आएगा। हमने कितने देखा? देखो ये अनंत तो हो गए पुनरुक्त स्थान। अब इतने अनंत वैरायटी वाले अगर हम जीव वहां मान लेंगे, वो तो कितने अनंत हो जाएंगे। हाँ, परंतु यहाँ जितने स्थान उत्पन्न किए गए हैं उतने सिद्ध है नहीं, क्योंकि सिद्ध अतीत काल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। यानी इतने अभी तक भी वो एट ए टाइम तो नहीं कहते हैं, अभी तक जितने हुए उतने भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए उन्हें उक्त स्थान प्रमाण मानने में विरोध आता है। ये पॉसिबिलिटी बतलाई यहाँ पर, इतने होते नहीं है, बाकी बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो। ज्ञान से,